ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। अधिक मास का अभी आखिरी मंगलवार है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भगवान के नाम के कीर्तन के रस में डुबाया जाए, क्योंकि सरिनाम संकीर्तन में बहुत अधिक शक्ति है। जय श्री राधे श्याम। यज्ञाय संकीर्तनाय प्रायेर यजन्ति ही सुमेधसहा। जो लोग बुद्धिमान होते हैं, सुमेधसहा, वो लोग कलयुग में भगवान के नाम के कीर्तन में रस लेते हैं, और जो प्रेक्षक के रूप में खड़े रहते हैं, देखते खाली बस जाते नहीं अंदर, उनको क्या कहें। क्योंकि जो व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन में उत्साह से भाग लेता है, उसके सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। मुझे आप एक व्यक्ति ढूंढ के निकाल के दिखाओ जो कीर्तन में नृत्य कर रहा है भगवान के नाम का गुणगान गाते हुए, और वो दुखी है, ऐसा मुझे दिखा सकते हैं आप? कोई भी व्यक्ति हो। मैं कुछ लोगों को देख रहा था, यहाँ पर कीर्तन हो रहा था और कुछ लोग वहाँ से आ रहे थे, तो आते एकदम ऐसे चेहरे पे उनके मुस्कान आ गई। हाँ, क्यों आती है वो? क्योंकि हरिनाम संकीर्तन में कोई दुखी नहीं रह सकता है। हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो आनंदमय हो जाता है। जितने भी दुख उसके मन में लगे हुए हैं, कम से कम उतने समय के लिए क्यों ना हो, वो तुरंत दुख से मुक्त हो जाता है। दुख, पीड़ा, यातना, वेदना, ये सब से मुक्त हो जाता है। और ये जो आनंद का अनुभव होता है, कुछ समय के लिए क्यों ना हो, और उसमें भी एक बात ऐसी है कि जितना आप भाग लोगे उतना आपको अधिक आनंद आएगा। जितना आप दूर दूर रहोगे उतना आपको आनंद नहीं आएगा। अगर आप केवल नाचोगे तो आपको आनंद नहीं आएगा, लेकिन नाचते हुए आप महामंत्र बोलोगे मुख से तो आपको अधिक आनंद आएगा। क्योंकि आनंद नृत्य में नहीं है, आनंद भगवान के कीर्तन में है, भगवान के नाम के गुणगान में है। इसलिए हम बोलते बार बार कि आप नाचते में इतना गुम मत हो जाओ कि बोलने के लिए भूल जाओ, तो केवल म्यूजिक और नाच इतना ही बचता है। हाँ, भगवान का नाम का कीर्तन जो है उसके अंदर भगवान का नाम कट करेंगे तो क्या बचता है? म्यूजिक और नृत्य, और कुछ नहीं बचता उसके अंदर। लेकिन जब भगवान का नाम उसमें रहता है हृदय से पुकारते हुए, तो वो दिव्य बन जाता है, वही बात दिव्य हो जाती है। और ये जो हरिनाम संकीर्तन है, ये असली इम्पोर्टेड माल है। भारत में सबको बहुत वैल्यू है ना इम्पोर्टेड को, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन इंग्लैंड, बहुत वैल्यू है भारत में, इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड। लेकिन ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेड माल है, क्योंकि ये गौलोक धाम से लाया गया है। गौलोक के प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन, भगवान के घर से इसको इम्पोर्ट किया गया है। और जो भगवान के घर का दिव्य आनंद है, वो केवल हरिनाम के कीर्तन के माध्यम से आप सबको उपलब्ध कराया गया है। इसलिए उसको देखते ही लोगों को मन में खुशी होती है, देखते ही। और जितना अंदर जाएंगे, जितना आप अंदर के मंडली में घुसेंगे, उतना आपको और आनंद आएगा। और इसका रहस्य यह है कि हम जब नृत्य करते हैं तो मैं कितना सुंदर नाचता हूँ इस भावना से नृत्य नहीं करते। मेरे शरीर का हर अंग जो है, उसकी हर अंग की जो मूवमेंट है, गति जो है, वो भगवान के आनंद के लिए है, इस भावना से नृत्य करते हैं। नृत्य का मतलब है सब संकोच, सब अपना मान सम्मान भूल कर, मैं कौन हूँ, क्या मेरी पोजीशन है, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, सुंदर हूँ दिखने में, अच्छा नाचता हूँ कि नहीं नाचता हूँ, बहुत सारे विचार मन में आते हैं उस समय। इस सब को छोड़कर जब भगवान के लिए हम नृत्य करते हैं, जैसे मीराबाई नाचती थी, भगवान के लिए नाचती थी, वो किसी के लिए नाचती नहीं थी, केवल भगवान के आनंद के लिए वो नृत्य करती थी। जब हमारे अवयव भगवान की सेवा में हम लगाते हैं भगवान के हरिनाम संकीर्तन में, तो हमारी पूर्ण शुद्धि हो जाती है, काया वाचा मनी, शरीर मन और क्या वाचा, इन तीनों की शुद्धि हो जाती है, और तीनों के माध्यम से हम भगवान को पहुंच सकते हैं, भगवान की तरफ। इसलिए जब हम तन मन और भावना से और वाचा से, मुख से हरिनाम संकीर्तन में लीन हो जाते हैं, तो गौलोक धाम में जो आनंद उपलब्ध है, वहां पर रहने वालों को, मुक्त जीवों को, वो आनंद आपको उस समय के लिए क्यों ना हो उपलब्ध हो जाता है, जितने समय आप इसमें भाग ले रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप पढ़ेंगे तो अनंत वर्णन है इसका, कीर्तन का, यहाँ पर किया, वहाँ पर किया, जगन्नाथपुरी में किया, मायापुर में किया, नवद्वीप में किया, साउथ इंडिया में किया, उधर किया, नदी किनारे, समुद्र किनारे, समुद्र में, सब जगह पर, इतनी इतना वर्णन है उसका। खाली आपको लगे क्या है इसके अंदर, केवल नाचने का ही वर्णन किया, कुछ है ही नहीं दूसरा कुछ। लेकिन ये वर्णन करने वाले जो कृष्णदास कविदास गोस्वामी हैं, वो लिखते हैं कि एक्चुअली वो क्या हो रहा है मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ आपको। समझो आपको मुझे बताया गया कि आपने अभी जो नृत्य किया उसका जरा लिखो, वर्णन करो उसको, हाँ बातमी पत्र में छापना है। अधिक से अधिक क्या लिखेंगे, यहाँ पर औरतें, यहाँ पे आदमी गोल गोल नाच रहे थे, फिर बोलेंगे कुछ लोग कूद रहे थे। लेकिन आप कितना भी लिखोगे ना, कितना भी लिखोगे, तो एक्चुअली जो यहाँ पर हो रहा है वो उसका चित्रण आप वहाँ नहीं कर सकते। ये तो हमारा तो सामान्य नृत्य है। चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे आकाश में उछलते थे, उनके सगे संबंधी जो नाच करने वाले थे, उनके जो साथ में थे पार्षद, और वो बार बार लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। आप समझ लो क्या होता होगा। जैसे हमारे गुरुदेव नाचते हैं तो हम लोग उसको लिख नहीं सकते हैं कि कैसे वो पैर को ऊपर उठाते हैं, कैसे वो कूदते हैं और कैसे करते हैं, कैसे गोल घूमते हैं, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। उसी तरह से ये जो दिव्य आनंद है इसका वर्णन नहीं कर सकते। आपको कह सकते हैं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन आपको खुद को उसको अनुभव करना होगा, और वो अनुभव जो है वही आपका प्रूफ है। हमने अगर फ्रिज में अच्छा केक बना के रखा है और उसका वर्णन करते जा रहे हैं, इसमें ये डाला हुआ है, ये डाला हुआ है, इसमें ऐसा है, ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम है, ड्राई फ्रूट्स है, वर्णन करते जा रहे हैं, कब तक सुनते रहेंगे वर्णन आप? जब खोल के उसको खाएंगे तो आगे कोई वर्णन की जरूरत नहीं है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको उसके अंदर क्या था, है ना। उसी तरह से हरिनाम संकीर्तन है, उसी तरह से भगवान की लीला है, उसी तरह से ये दिव्य धाम का आनंद है। हम लोग बोलेंगे वर्षाना में हम लोग गए, इतना आनंद हुआ, इतना शक्ति प्राप्त हुआ कि हम लोग थकते ही नहीं थे, 12 घंटा काम करते थे, 4 घंटा सोते थे, पहाड़ चढ़ते थे, जपा करते थे, फिर भी हमको नींद नहीं आती थी। तो आप सुनते रहेंगे आप बैठ के, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या होता है। यात्रा में क्या होता है, हाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पर खुद जाके चखना पड़ेगा। ऐसा ये भगवान का भक्ति का मार्ग है, तो सबके लिए लाभकारक है। हाँ कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई गोरा है, काला है, सुंदर है, जवान है, बूढ़ा है, कोई भी व्यक्ति, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुरुष है, स्त्री है, पाकिस्तानी है, भारतीय है, नो प्रॉब्लम। सब लोग जो भी इस कीर्तन में भाग लेते हैं, जो भी इस नाम का उच्चारण करते हैं भगवान के नाम का, किसी भी धर्म के अनुसार, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वही अनुभव मिलेगा, वही वस्तु है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का वर्णन यहाँ हो रहा है, और वो संन्यास लेने के बाद में इसी हरिनाम संकीर्तन को बांटने के लिए सब जगह यात्रा कर रहे हैं। संन्यास लेते ही तुरंत भागने लगे वो, तुरंत सब जीव मात्रों को भगवान के नाम का भेंट देने के लिए। तो ऐसे ही वो जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, अभी वो पहुंच रहे हैं रेमुना। रेमुना नाम की जगह है, जगन्नाथपुरी से 8 घंटे का रास्ता है। उसके पहले शांतिपुर आता है, शांतिपुर के बाद में रेमुना आता है, यमुना के बाद में जगन्नाथपुरी आता है। हाँ हम में से कुछ लोग जाके आए, लेकिन रेमुना नहीं गए, दूर था जरा। तो उस रेमुना में चैतन्य महाप्रभु पहुँचते हैं और वहाँ के गोपीनाथ का दर्शन करते हैं। गोपीनाथ का दर्शन करते ही एकदम पागल से हो जाते हैं, एकदम भाव विभोर होकर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। सब वहाँ के पुजारी भक्तगण जो है एकदम अचंभित हो जाते हैं, अरे क्या क्या प्रेम है ये, कैसा लक्षण है। फिर उनको याद आती है कि इस गोपीनाथ का नाम खिलचोर गोपीनाथ है, और उनके गुरु महाराज थे ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के। संन्यास गुरु थे केशव भारती महाराज, लेकिन दीक्षा गुरु थे के ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु महाराज थे माधवेंद्रपुरी। और ये जो कहानी है, ये कहानी माधवेंद्रपुरी जी की है, जो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पृथ्वी पर भारतवर्ष में राधा रानी का तत्व को प्रकाशित किया। उसके पहले तो केवल विष्णु भगवान की मूर्ति, अकेली मूर्ति की पूजा हुआ करते थे, लेकिन राधा रानी को प्रकट उन्होंने किया, उस तत्व को उन्होंने प्रचारित किया। तो वो माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के गुरु थे, और ईश्वरपुरी ने बहुत उनकी सेवा की थी, इतनी सेवा की थी, वो मरणासन्न अवस्था में अपने शैया पर पड़े हुए थे, उनका मलमूत्र निकालना, उनको साफ करना, और तब वो एक मंत्र बोला करते थे जो गोपियाँ कृष्ण के विरह में पुकारा करती थी। उस मंत्र का रहस्य जो था वो केवल गोपियों को पता था, और वो गोपियों को और माधवेंद्र पुरे को पता था, चैतन्य महाप्रभु को पता था उस मंत्र का रहस्य। वो मंत्र वो पुकारते थे, उसमें ऐसा कहा गया है कि कहाँ हो भगवान आप, अब हम सब खोड़ को मथुरा चले गए, अब मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है, मर जाऊँ कि जीवित रहूँ, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा वो मंत्र जो बार बार दोहराते थे माधवेंद्रपुरी अपनी मरणासन्न अवस्था में, और उस भाव विभोर अवस्था में उनके शरीर को उनको भान नहीं था, उस अवस्था में उस शरीर की देखभाल ईश्वरपुरी बड़े प्रेम से करते थे, इसलिए ईश्वरपुरी महाराज को बहुत कृपा प्राप्त हुई अपने गुरु जी की तरफ से। और फिर उस कृपा के उपलक्ष्य में, उस फल के रूप में, भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बने, इतनी कृपा प्राप्त हुई। ऐसे भगवान का कोई गुरु नहीं है, भगवान सबके गुरु हैं, लेकिन जब पृथ्वी पर आते हैं लीला करने के लिए तो भी गुरु स्वीकार करते हैं एक आदर्श स्थापन करने के लिए। तो वो ईश्वरपुरी इतनी कृपा प्राप्त की भगवान की कि भगवान स्वयं उनके शिष्य बने, और उनके मुख से उन्होंने मंत्र सुना, मंत्र लिया, दीक्षा मंत्र। तो चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु ईश्वरपुरी ने उनके गुरु की कहानी बताई थी कि कैसे ये यहाँ पर आए थे माधवेंद्रपुरी जी। तो माधवेंद्रपुरी जी सबसे पहले वृंदावन में आए, और वृंदावन में आए तो इतने भाव विभोर हो गए, वो कभी बेहोश होते थे, कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी पड़े, कभी चलते थे, कभी नाचते थे, कभी कुछ कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ समझ में आ रहा है, कभी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे ही उनका एकदम व्यवहार ऐसे था कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पता चल रहा था कि भगवान के बड़े प्रेमी भक्त ही है। ऐसे दिन भर वो लोटपोट होते रहे, गिरते रहे, उठते रहे, रोते रहे, और जब उठे आखिर में तो गोविंद कुंड में उन्होंने स्नान किया। गोविंद कुंड अपने कितने लोग गए यहाँ से, कितने लोग गए गोविंद कुंड में, अरे आपको पता नहीं गोवर्धन में हम लोग जमुना गोवर्धन के किनारे बड़ा कुंड है, वहाँ पर स्नान किया था। तो गोविंद कुंड में वो स्नान करते हैं, तब तक रात हो जाती है, और तब तक भाव विभोर होने की वजह से वो नाश्ता नहीं करते, कोई खाना भी नहीं खाते, उपवास में रहते हैं। और उनका एक नियम था, वो कहीं भी भिक्षा नहीं करते थे, किसी ने कुछ लाके दिया अपने आप तो खाते थे। वो सन्यासी थे तो उनका घर तो था नहीं, कोई बीवी तो था ही, बीवी घर कोई रसोई थी नहीं उनकी, सब चलने वाले थे वो यहाँ से वहाँ, पेट के नीचे रहने वाले थे, लेकिन कभी भिक्षा नहीं करते थे। कभी उन्होंने कुछ प्राप्त हुआ अपने आप तो खाते थे, तो भूखे सोते थे। तो ऐसे ही स्नान किया, तो रात हो चुकी थी, तो पेट के नीचे सो गए वो। तो सोने के बाद उनको स्वप्न आया, सॉरी सोने गए, बैठे थे पेड़ के नीचे, तब एक सुंदर बालक उनके पास में आया, और वो बालक ने कहा कि आप बड़े भक्त हो भगवान के, और मैंने सुना है कि आपने उपवास किया है। बोले हमारे गांव में कोई उपवास नहीं करता है। आपको कैसे पता मैंने उपवास किया है? नहीं, गोविंद कुंड में जो बर्तन कपड़े धोने के लिए माताएं आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि बाबा ये बहुत देर से भजन कर रहे हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं है। हमारे गांव में कोई भजन उपवास नहीं करता है, और जो लोग भिक्षा करते हैं उनको हम भिक्षा देते हैं, जो भिक्षा नहीं मांगते और उपवास करते हैं उन्हें मैं स्वयं मां के दूध देता हूँ, जो गोपियों ने कहा है, इसलिए मैं आपको दूध दे रहा हूँ, आप इस दूध को पीजिए। तो उस बालक के सुंदर को देख के बहुत प्रसन्नता हुई माधवेंद्रपुरी के मन में, उन्होंने भाव विभोर होकर उसको, और बालक ने कहा कि आप दूध पीजिए, मैं कुछ देर बाद में मेरा काम करके गाय का दूध निकाल के गाय चरण करके मैं आ जाऊंगा और आपका पात्र ले जाऊंगा। तो उन्होंने दूध को प्रसन्न किया, उतने एकदम दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई उनको, एकदम दिव्य आनंद का अनुभव हुआ, रोमांच खड़े हो गए उनके शरीर पे, और वो भावना इतनी उनकी तीव्र थी कि उनको नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत देर तक बालक का इंतजार करते बैठे, कभी आएगा वापस, वो मुझे पात्र वापस देना है। बहुत देर तक बैठे रहे उनके, बालक वापस लौट के आए नहीं, उसकी याद करते रहे कितना सुंदर बालक था। और बीच में बैठे बैठे उनको दो मिनट के लिए झपकी लग गई, ऐसी आँख ऐसे लग गई, उसमें उनको स्वप्न आया, और वही बालक लौट के आया। उन्होंने कहा कि मैं गोपाल हूँ, गाय चरण करने वाला, और मैं उनको हाथ पकड़ के स्वप्न में घने जंगल में लेके जाते हैं गोवर्धन के पास, गोवर्धन के अंदर लेके जाते हैं, और बहुत गर्द झाड़ी के अंदर उनको दिखाते हैं, देखो यहाँ पर मैं रहता हूँ, बहुत साल से रह रहा हूँ जमीन के अंदर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत गर्मी और पीड़ा का अनुभव करता हूँ, आप मुझे यहाँ के लोगों को बुलाकर ब्रजवासियों को मुझे निकाल लीजिए यहाँ से, और गोवर्धन के ऊपर मुझे स्थापन कर लीजिए, और मंदिर लगाए बनाकर जो भोग लगाइए, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। जैसे ये बात हो रही तब सबसे नींद खुल गई, तब उनको समझ में आया कि अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, साक्षात कृष्ण भगवान मेरे सामने आया, मुझे अपने हाथ से दूध पिलाया, मैं इनको पहचान नहीं पाया, मैं कैसा भक्त हूं। साक्षात मेरे आराध्य भगवान मेरे सामने आए और ये विचार करके उनको फिर बेहोश हो गए, वो आनंद से आनंद विभोर हो गए एकदम। लेकिन फिर अपने आप को उन्होंने संभाला, नहीं कि मुझे भगवान ने आदेश दिया है, कुछ सेवा दिया है, अभी मुझे ज़्यादा आनंद करने की जरूरत नहीं, उनके आदेश का पालन करना चाहिए। तुरंत गांव में चले जाते हैं और सब लोगों को बताते हैं क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और सब लोग अपना औजार लेके आते हैं। वो कहते हैं कि बहुत घने जंगल में जगह है ठाकुर जी की, इसलिए आप अच्छे अच्छे औजार लेके आना, आप जंगल में आपको रास्ते में काटना पड़ेगा वहाँ पहुँचने के लिए। तो लोग काटते 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 अकेले चले गए उनके निर्देश के अनुसार, और वहाँ जाकर उन्होंने जगह खोदी तो बहुत सुंदर काले पत्थर की बहुत ही तेज पुंज लगने वाली ऐसी मूर्ति प्रकट हुई जमीन से, और दो आदमी उसको उठा नहीं पाए, इसलिए और लोगों का गांव से बुलाया गया। उन्होंने बहुत भारी भगवान की मूर्ति को उठाया और गोवर्धन पे जाकर उसको रखा एक बड़ी शिला के ऊपर, और उसके एक बड़ी शिला से आधार दिया पीछे से, और जैसे भगवान ने कहा था कि मुझे भोग चढ़ाओ, तो पहले तो उनको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सुगंधी तेलों से बहुत मसाज किया गया। उनके शरीर जो बहुत दिन से जमीन के अंदर था तो बहुत रफ हो गया था, उसको बहुत तेल का मालिश कर करके उसको चमकाया गया पहले, फिर सुगंधित द्रव्यों से और पंचगव्य से, पंचगव्य मतलब दूध दही घी गोबर और गोमूत्र, ये पंचगव्य कहते हैं, और पंचामृत कहते हैं गोबर, सॉरी दूध दही और घी और मधु और शक्कर का पानी, है ना, पांच चीज़ें, ये पंचगव्य और पंचामृत इनके इनसे अभिषेक करते हैं, फिर उनको सुखाते हैं, फिर उनको सुगंधित तेल से फिर मालिश करते हैं, बहुत बहुत सेवा करके उनकी मूर्ति को बहुत चमका देते हैं बहुत। और फिर घर में जितना दूध है अनाज है फल फूल है सब लाकर उनके व्यंजनों को उनको अर्पण करते हैं, चावल का पहाड़ अर्पण करते हैं, जैसे भगवान ने गोवर्धन पूजा की थी वैसे गोपाल जी को वो अन्नकूट अर्पण करते हैं। और उसके बाद खबर फैलती है कि गोपाल जी प्रकट हो गए हैं, बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है, बहुत तेज पुंज है। तो आजू बाजू के गाँव के लोग आते हैं और ब्राह्मण देव को माधवेंद्रपुरी को विनती कर करके कहते हैं हमारे लिए एक दिन दे दो, हमारे लिए एक दिन दे दो। तो ऐसे अनंत गांव में से हर एक गांव की तरफ से एक एक दिन उत्सव होता है, आधा दिन पूरा तैयारी, फिर अन्नकूट का भोग, वो शाम को आरती पूजा, सबके लिए प्रसाद सेवन, एक गांव का सेवा हो गया, कल दूसरा नंबर, कल तीसरा नंबर। पूरा राज्य के जितने गाँव हैं सब गाँव के लोग वन बाय वन करके आते हैं, वहाँ पर अन्नकूट भोग लगाते हैं। उसके बाद में उस राज्य के बाहर के राज्य के जितने लोग हैं वो सब वहाँ पर आने लगते हैं। दो साल तक गोपाल जी का अन्नकूट उत्सव रोज चलता है, रोज एवरी सिंगल डे। और साथ साथ जब बाहर के लोग आते हैं तो कोई वस्त्र लाते हैं, कोई अलंकार लाते हैं, कोई मुकुट लाते हैं, कोई अलग अलग करके, एक राजा ने मंदिर बनवा दिया, एक राजा ने बाउंड्री बना दिया, एक राजा ने जमीन दे दिया, एक राजा ने अलंकार दे दिया, ऐसे करके दो साल के अंदर बड़ा भव्य मंदिर, भव्य पटांगण, खेती बाड़ी, सब ऐश्वर्य जो है गोपाल जी का एकदम भर जाता है। दो साल के अंदर गोपाल जी की सेवा में माधवेंद्रपुरी ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कैसे पूजा करनी है उनकी, उनको दीक्षा भी देते हैं, उनको ब्राह्मण दीक्षा देकर उनको भगवान की पूजा में लगा देते हैं। दो साल के बाद में फिर स्वप्न में आते हैं भगवान और कहते हैं कि दो साल के पश्चात भी मेरे शरीर की गर्मी जो है वो अभी तक ठंडी नहीं हुई है, मैं अभी भी तप रहा हूँ। तो माधवेंद्रपुरी सपने में पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, वो कहते हैं कि मेरे शरीर को मलय चंदन की लकड़ी का लेप अगर लगाया जाए तो शायद मेरी अग्नि शांत हो सकती है, तो आप जगन्नाथपुरी जाओ और मेरे लिए मलय चंदन की लकड़ी लेके आओ, मलयगिरी। तो तुरंत वो सबको समझाते हैं और ब्राह्मणों को बताते हैं मैं अभी जो जाऊँगा निकल के, आप पूजा करना भगवान की ठीक से। और पैदल चलते हैं इतनी दूर, जगन्नाथपुरी कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, बहुत दूर है। और जब वहाँ जाते हैं तो पहले शांतिपुर पहुंचते हैं। शांतिपुर किसका घर है? यस, हाँ, अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु की लीला में महाविष्णु जी जो है वो अद्वैत आचार्य बनकर प्रकट होते हैं। जो हमारे पंचतत्व का फोटो होता है ना, जो दाढ़ी वाले व्यक्ति होते हैं जरे व्हाइट वस्त्र पहनने वाले, वो अद्वैत आचार्य, वो महाविष्णु जी का, सदाशिव का, शिव जी का भी अवतार है। तो माँ शांतिपुर में जब पहुँचते हैं माधवेंद्रपुरी जी, तो उनके माधवेंद्रपुरी के शरीर के लक्षण को देखकर अद्वैत आचार्य बड़े प्रभावित होते हैं और तुरंत उनके दीक्षा मांग करते हैं कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो माधवेंद्रपुरी शांतिपुर में अद्वैत आचार्य को दीक्षा देते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। और वहाँ से वो आगे चलते रेमुना पहुंचते हैं। और ये सब कहानी जो मैं बता रहा हूं आपको, ये रेमुना में बैठकर चैतन्य महाप्रभु वहां के भक्तों को बता रहे हैं कि यहां पर क्या हुआ था, ये मेरे गुरु ने मुझे बताया। ऐसे रेमुना में बैठकर ये कहानी जो पूरी आपको बता रहा हूं, वृंदावन से आरंभ हो रही है, वो सारी चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान बता रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया हुआ कहानी कई पन्नों तक चलता है, कई अध्याय तक। तो रेमुना पहुंचते हैं माधवेंद्रपुरी और उनको बड़ी खबर मिलती है कि यहाँ पर बहुत बड़ी सेवा होती है भगवान की और इनको एक विशेष खीर अर्पण करते हैं जो पूरे विश्व में विख्यात है। जब तक पहुँचते तो शाम हो जाती है, तो शाम को पुजारी से मिलते हैं, बताओ इस मंदिर की विशेषता क्या है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं खीर की, शाम को 12 पात्र में लगाते हैं और उसका स्वाद जो है वो अवर्णनीय होता है, कोई उसको वर्णन नहीं कर सकता है, पूरे विश्व में ये मशहूर है हमारी भगवान के खीर प्रसाद जो है। तो ये सोचते मन में अगर मुझे ये पता लगे कि कैसे खीर बनाते हैं, कुछ चखने को मिल जाए तो मैं भी अपने गोपाल के लिए वैसे ही बनाऊंगा। और ये सोच ही रहे हैं तभी 12 पात्र में खीर का भोग आता है वहाँ पर भगवान को लगाने के लिए। तो वो खींचते हैं, अरे मुझे उसको मिल जाए, मुझे चखने को, तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसा सोच ही रहे हैं तो उनके मन में और एक विचार आता है, अरे मैं कितना पापी हूँ, अब तक उस खीर का भगवान को भोग भी लगा नहीं है, भगवान ने उसको प्राप्त नहीं किया है, उसके पहले मैंने उसको प्राप्त करने की इच्छा की, कितना पापी हूँ मैं। बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं अपने आप और तुरंत वहां से निकल जाते हैं, पुजारी को समझता नहीं कि कभी बात कर रहे थे कभी निकल गए, और निकलकर दूर जाकर एक गांव में बैठ जाते हैं एकांत जगह पर और पश्चाताप की भावना में आंखों में आंसू लेकर भगवान के नाम का जप शुरू करते हैं। उतने 12 पात्र का भोग लगता है खीर का, पर्दा बंद हो जाता है, कुछ देर में पर्दा खुलता है और खीर के पात्र निकाल लेते हैं वो, और पुजारी सो जाता है भगवान को शयन करके। और ये रात में बैठकर एकांत में भजन कर रहे हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, भगवान को भोग लगाने के पहले ही उसकी मैंने इच्छा की। तो रात्र में पुजारी को स्वप्न आता है गोपीनाथ जी के मंदिर के, वो कहते हैं, पुजारी को जगाते हैं भगवान, मतलब दिन में सपने में, वो कहते हैं कि पुजारी उठो, देखो मैंने मेरे धोती के पीछे एक पात्र को छुपा के रखा है और तुमने गिने नहीं कितने पात्र उठाए तुमने वहाँ से, 12 पात्र का भोग लगाया था लेकिन तुमने एक्चुअली 11 ही पात्र वहाँ से उठाए और एक पात्र तुमने गिना ही नहीं, तो एक पात्र जो है मैंने मेरे पैर के पीछे धोती के पीछे छुपा के रखा है, तुरंत उठो और ये पात्र मेरे प्रिय भक्त जो माधवेंद्रपुरी है उनको ढूंढ के निकाल के उनको पहुंचाओ, मेरी इच्छा है कि ये पात्र की जो खीर है मैं उनको देना चाहता हूँ। चलो झट से बीच रात में उठ गए 2 बजे और देखे, अरे तुरंत स्नान किया और मंदिर में प्रवेश किया, देखा तो भगवान ने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए एक पात्र खीर का छुपा के रखा है अपने हाथ से। कैसे महान भक्त होंगे माधवेंद्रपुरी, स्वयं गोपीनाथ जी अपने हाथ से खीर चुरा कर छुपा रहे हैं उनके लिए। तो तुरंत वो पात्र लेकर रात को बीच में वो जाते रास्ते में पुकारते, माधवेंद्रपुरी कौन है, कोई माधवेंद्रपुरी है, कोई माधवेंद्रपुरी है, तुम्हारे लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया है, कहाँ हो माधवेंद्रपुरी, मैं तुमको एक खीर देना चाहता हूं। तो माधवेंद्रपुरी झट सुनते हैं, तुरंत बाहर आते हैं, माधवेंद्रपुरी तुरंत चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, आप बड़े महान भक्त हो, बड़े भाग्यवान हो, गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चुराया है, लो इस खीर को। बीच रात में गोपीनाथ जी की भावना और प्रेम और अनुकंपा को देखकर माधवेंद्रपुरी बड़े प्रभावित हो जाते हैं, हाँ प्रभु जी, माधवेंद्रपुरी बड़े आनंद से भाव विभोर हो रहे हैं, हाँ तो झट से वो खीर खा लेते हैं और पात्र को धोते उसको पी लेते हैं और पात्र के टुकड़े करते अपने जेब में रखते बांधकर कपड़े में और रोज इस पात्र का एक टुकड़ा खाते हैं और जब खीर खाते हैं तो एकदम पागल जैसे हो जाते हैं, नाचते रहते आनंद से, और जब भी रोज वो टुकड़ा खाते हैं मट्टी का कुल्लड़ का तभी वो उनको ऐसे ही अनुभव होता है। और कुछ ही देर बाद उनको पता चलता है कि अभी मतलब एक्चुअली वो जो पात्र के टुकड़े खाते हैं वो बाद में खाते हैं, रात को पहले खीर खाते हैं, लेकिन रात में उनके मन में विचार आता है, अरे अब तो बात फैल जाएगी यहाँ पर गाँव में पूरे कि मैंने मेरे लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया है, मैं बड़ा महान भक्त हूँ, ऐसे बात फैल जाएगी सब लोग दर्शन करने आएंगे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, मुझे इतना मान सम्मान नहीं चाहिए, मान सम्मान विष के समान होता है, हाँ क्या कहते हैं, पूजा प्रतिष्ठा शुक्र है विष्ठा, ऐसे संत लोग कहते हैं, पूजा और प्रतिष्ठा जो होती है ना, जो मान सम्मान होता है वो सुअर के टट्टी की तरह मानते हैं संत लोग, तो बहुत गंदी बात है ये मान प्रतिष्ठा को स्वीकार करना, इसलिए रात को ही भाग जाते हैं वहां से। अगले दिन सब गांव में ढूंढते हैं माधवेंद्रपुरी कहाँ है, कहाँ है वो व्यक्ति, कहाँ है वो व्यक्ति जिन्होंने, जिनके लिए भगवान ने खीर का पात्र चुराया था, लेकिन वो चले गए। लेकिन वो जहां पहुंचते हैं, जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, वहीं आगे उनके खबर पहुंच जाती है, वो खबर जो है पहुंच जाती है। ऐसे कहा गया है कि जो मान सम्मान चाहता है उसका लोभी है व्यक्ति, मान चाहिए उसको, सम्मान चाहिए उसका अपमान होते रहता है और जो मान नहीं चाहता है उसके पीछे मान भाग भाग के उसके पीछे उसके आगे पहुंच जाता है। ऐसे संत लोग ने लिखा है शास्त्र में वाक्य, दोज हु वांट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट रन्स अवे फ्रॉम देम, दोज हु डोंट वांट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट रन्स बी अहेड ऑफ देम। जैसे होते ना छाया, अपनी शैडो होते ना शैडो, उसके पीछे आप भागेंगे तो क्या होगा, वो आपसे दूर भागेगी, उससे आप दूर भागेंगे तो आपके पीछे पीछे आएगी। वैसे मान सम्मान का होता है। तो ये मां जगन्नाथपुरी पहुंचने के पहले इनकी ख्याति वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर यहां से भाग जाऊंगा तो मेरा काम नहीं होगा, मेरे को सेवा दिया है गोपाल जी ने चंदन लाने का। तो फिर जाके वो जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, वहां पुजारी से मिलते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, भाव विभोर होकर जगन्नाथ का प्रसाद लेते हैं। वह कहते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, सब कहानी बताते हैं जगन्नाथ के पुजारियों को। तो जगन्नाथ पुजारी गवर्नमेंट के ऑफिसर को जाकर मिलते हैं, क्योंकि वहां सब जगह पर उस समय मुसलमानों का राज था, बहुत कठिन था उस समय चंदन का लकड़ी प्राप्त करना वगैरह वगैरह। तो बहुत अपना वसीला लगाकर तो बात करके, यहाँ बात करके, ऑफिसर के बात करके 36 किलो, हाँ 37 किलो चंदन, शुद्ध चंदन जो है वो इकट्ठा करते हैं, और 2 किलो 300 ग्राम ये क्या कहते हैं कपूर इकट्ठा करते हैं, जैसे भगवान ने उनको बताया था वैसे, और इकट्ठा करके उसका टैक्स वैक्स सब पैसा देकर उनको एक ब्राह्मण और एक असिस्टेंट देकर वो भेज देते हैं कि चलो ये आपके लिए चंदन को घिसेंगे और ये आपको लेप करने मदद करेंगे, आप इनको साथ में लेके जाना, ये एक्सपर्ट है सब लोग। एक ब्राह्मण, एक सेवक, 37 किलो चंदन, 2 किलो 300 ग्राम कर्पूर लेकर ये आगे वापस वृंदावन की ओर चलने लगते हैं, इतना भारी सामान लेकर। तो वापस रेमुना पहुंचते हैं, कोई रास्ता तो वही है ना, जगन्नाथपुरी से रेमुना, रेमुना से शांतिपुर, शांतिपुर से आगे वृंदावन चलना है उनको। तो जब रेमुना पहुंचते हैं फिर उनका स्वागत होता है वहां पर, अरे माधवेंद्र लौट के आए, इनके लिए भगवान ने खीर का पात्र चुराया था। तो वहां पर रह के जब विश्राम करते हैं तो दोबारा गोपाल जी स्वप्न में आते हैं, और गोपाल जी चैतन्य महाप्रभु स्वयं वर्णन कर रहे हैं इसका। वो कहते थे कि जितना कष्ट उन्होंने उठाया धूप में चलने का वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक, अभी वापस सामान लेकर लौट रहे हैं, फिर कितने उनको रस्ते में हैरेसमेंट हो रहा है, टैक्स कलेक्टर लोग रोक रहे हैं उनको, 50 प्रश्न पूछ रहे हैं क्यों लेके जा रहे हैं, आप जानते हैं ना आप कुछ माल लेके जाते हैं बाहर तो कितना रस्ते पर रोकते हैं, पूछते हैं बिल्टी दिखाओ, ये दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, हमारे कैंप का जब ट्रक जाता है यहाँ से बरसाने में हर एक राज्य के बॉर्डर पर उनको रोकते हैं, सारे पेपर दिखाते हैं कितना माल है इसमें, क्या किस लेके जा रहे हैं, बेचने को ले जा रहे हैं कि सेवा में ले जा रहे हैं, इसलिए हमने अभी उसको भेजना ही बंद कर दिया, अभी वहीं पर माल स्टॉक करते हैं। तो वैसे उस समय भी हुआ करता था, तो इतना कष्ट उन्होंने सहन किया था, तो भगवान ने बड़ी कृपा से सोचा कि क्यों मेरे भक्त को और कष्ट दूं मैं, इतना तो उन्होंने कष्ट से चंदन मेरे लिए प्राप्त किया है। दोबारा स्वप्न में आते हैं, कितनी बार स्वप्न में आ गए, तीसरी बार आ गए, एक बार डायरेक्टली मिले, एक बार स्वप्न में आए, दूसरी बार स्वप्न में आए चंदन को लाने के लिए बताया, तीसरी बार स्वप्न में आ रहे हैं बता रहे हैं अभी आप वृंदावन आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और गोपीनाथ एक ही हूँ, आपने मुझे गोवर्धन पर स्थापन किया है गोपाल के रूप में, और यहाँ पर आपके सामने गोपीनाथ जी खड़े हैं वो मैं ही हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण और सेवक को लगाकर लोगों की सहायता करके यही चंदन को घिस के मुझे यही इस चंदन का स्टॉक समाप्त होने तक रोज चंदन का लेप लगाया करो, उसको मैं गोपाल जी के रूप में गोवर्धन में स्वीकार करूँगा और उससे मैं पूरा ठंडक प्राप्त करूँगा। तो ये दोबारा स्वप्न जो है फिर वो पुजारी को समझा दे कि मैं स्वप्न में ऐसा ऐसा आया था, तो चंदन का स्टॉक वहाँ रखते हैं, जो आया हो ब्राह्मण और सेवक है वो उनकी सहायता में और 2 आदमी लेकर रोज चंदन घिसते हैं और पूरे गोपीनाथ के शरीर को वो चंदन लगाते हैं, और चंदन के स्टॉक को समाप्त करते करने तक वहीं रहते हैं, 1 महीना तक उधर ही रहते हैं तब तक वो चंदन का स्टॉक खत्म हो जाता है, और उसके बाद में फिर माधवेंद्रपुरी लौटकर गोपाल जी की सेवा के लिए वृंदावन आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, मैं अभी उसको आपको पढ़ के दिखाऊंगा उनके शब्द क्या है माधवेंद्रपुरी के बारे में। क्योंकि गोपाल जी चैतन्य महाप्रभु गोपाल जी पूरे विश्व को समझाना चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी उन पर कितना प्रेम करते हैं, इसलिए माधवेंद्रपुरी को प्रेम को प्रकट करने के लिए गोपाल जी ने उनको नीलाचल यानी कि जगन्नाथपुरी चंदन लाने के लिए भेज दिया। माधवेंद्रपुरी को परीक्षा करने के लिए, उनकी प्रेम की कसौटी करने के लिए परम पुरुषोत्तम भगवान ने उनको आज्ञा दिया कि जाओ चंदन लेके आओ, और इस परीक्षा में वो पास हो गए। इसलिए भगवान ने बड़ी दया से उस चंदन को गोपीनाथ के शरीर को लगाने के लिए उनको आदेश दिया। ऐसा जो व्यवहार है ये केवल भक्त और भगवान के बीच में हो सकता है, जो सबके लिए प्रेम का प्रदर्शन करने वाले हैं, सबके लिए प्रेम करने योग्य व्यक्ति हैं, वो केवल भगवान हैं। और ऐसे भगवान के और उनके बीच भक्तों के बीच में ही ऐसा प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। सामान्य व्यक्ति इस तरह के प्रेम के व्यवहार को समझने में असमर्थ है, जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी अपने जीवन के अंतिम समय पर ये मंत्र जो है श्लोक बार बार बोल रहे थे, और ये मंत्र बोलकर उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया। वो मंत्र इस प्रकार से है, उसका अर्थ इस प्रकार से है। हे मेरे भगवान, हे मेरे दयालु मालिक स्वामी, हे मथुरा के नाथ, कब मैं आपको दर्शन करूंगा, कब मैं आपको देख पाऊंगा। आपको ना देखते हुए मेरा हृदय जो है बहुत ही दुखी हो चुका है और बहुत अस्थिर हो चुका है, बहुत चंचल हो चुका है। हे मेरे प्रिय नाथ, अब मैं क्या करूं। इस श्लोक को बार बार दोहराते हैं। इस श्लोक को दोहराने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने जब बता रहे थे ना कि कौन सा मंत्र दोहरा रहे हैं, ये मंत्र कौन सा दोहरा रहे हैं ये बता रहे हैं, और बताते बताते चैतन्य महाप्रभु बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में माधवेंद्रपुरी के प्रति और कृष्ण के प्रति जो भाव प्रकट हुआ उससे वजह से वो बेहोश हो गए। नित्यानंद प्रभु ने उनको संभाला, अपनी गोद में लेकर दुलारा। फिर चैतन्य महाप्रभु उठ के बैठे और फिर माधवेंद्रपुरी की याद करते हुए अति आनंद से विभोर होकर वो यहाँ से वहाँ भाग कर नृत्य करने लगे। कभी वो हंस रहे थे, कभी रो रहे थे, कभी गिर रहे थे, कभी नृत्य कर रहे थे। इस तरह से माधवेंद्रपुरी की कथा, तो इसीलिए गोपीनाथ जी को खीर चोर गोपीनाथ का नाम पड़ा, क्योंकि अपने प्रिय भक्त के लिए उन्होंने खीर का चोरी किया। हाँ, अगर हमको कोई बोलेगा कि घड़ी चोर, हाँ पॉकेट चोर, कंगन चोर, तो वो कितना बुरा लगेगा। हाँ, हमने बचपन में चोरी किया था, लेकिन अभी भी हमको नाम है ये, वो कंगन चोर, वो स्कूल में पढ़ता है, अभी डॉक्टर हो गया है, वही अपना गले का कंगन चोर। तो हमको गुस्सा आएगा अभी, अरे मैं डॉक्टर बन गया अभी तो, मैं अभी कंगन चोर बता रहे हैं लोग। लेकिन भगवान स्वयं अपने भक्त के प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने को चोर की उपाधि देने को तैयार है। हाँ, इसलिए उनको चोर अग्रगण्य कहा गया है। वो ऐसे भगवान है कि वो बचपन के समय बहुत मक्खन चुराया करते थे, थोड़ा बड़े हो गए तो फिर क्या करते थे, वस्त्रों चुराने लगे, वस्त्रों को, और वो बाद में फिर सबके हृदय को चुराते हैं, चित्त चोर, हृदय चोर कहते हैं उनको। उनको बड़ा गर्व है उस बात में, अपने भक्त के लिए चोरी करने के लिए कोई उनको शर्म नहीं आती उसमें। गोपियों को घर में जा जाकर वो मक्खन चुराते, सब लोग ताने देते उनको, ये तुम्हारा बालक बहुत नटखट है, बहुत चोर है। माता कहती नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसा मक्खन बनाती हूँ कि बेस्ट गिवारे जितनी गाय हैं उसमें से 900,000 में से 100 गायों का, बेस्ट गायों का, जिनको मैं बेस्ट घास खिलाती हूँ, उनको अलग से रखकर उनको सेवा करके उनका दूध जो है उससे निकालती हूँ, और उससे जमा कर दही में उससे मंथन करके मक्खन बनाती हूँ जिससे कमल की खुशबू आती है, पद्मगंधा कहते हैं उसको, पद्मगंधा गायों का, पद्मगंधा दूध और पद्मगंधा दही और पद्मगंधा मक्खन, इतना बढ़िया मक्खन बनाते हूँ, खिलाती हूँ, हो सकता नहीं तुम्हारे घर में आकर वो चोरी करेगा। लेकिन फिर भी अपने घर में पेट भर के घी खा कर मक्खन खाकर गोपियों के घर जाकर वो चोरी करते थे। क्या कारण था उसका, वो मक्खन के भूखे नहीं थे, वो गोपियों के प्रेम के भूखे थे, इसलिए वो उनके घरों में जा जाकर, गोपियां भी शिकायत करती थी, रोज आकर शिकायत करती थी, लेकिन शिकायत तो बहाना था और भगवान को देखना था, इसलिए जाते थे वो हमेशा। शिकायत कर रहे हैं यशोदा मैया यहाँ खड़ी है, तो शिकायत तो यहाँ करना चाहिए नहीं देखकर, लेकिन वहाँ देखकर शिकायत कर रहे हैं। सुन, जो आपके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मैं इनके पास आया, थोड़ी मैं यहाँ बोलकर उनको कंप्लेंट करूँगा, यहाँ देख कर ऐसे, मैं मुझे उनको बताना, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो बोले पागल आदमी, शिकायत करने आया हो, देखता कहीं और है और बोलता भी कुछ और है। तो जान बूझ कर यशोदा मैया को शिकायत करने के बहाने आते क्यों थे, कृष्ण को देखने के लिए। इसलिए कृष्ण कहाँ पर अंदर है कि आ रहे हैं कि बाहर, तो देख के यशोदा को शिकायत करती थी। तो कहती थी तुम लोग तो ऐसे ही सब लोग बोलते रहते हो, हमेशा बोलते रहते हो कि वो चोरी करते हैं, कभी एक बार सबूत तो दिखाओ, कभी तो रंगे हाथ पकड़ के लाओ उसको। कई चटपटी कहानियाँ उनकी, बार बार जाते हैं, जब गोपियों को चीटिंग करते हैं अच्छी तरह से और गोपियों को ही फंसाते हैं उसके अंदर, जब शिकायत करती है उनको ही फंसा देती है, उनका ही मजाक उड़ाते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं और फिर उसको ऐसे करते हैं, मुझे पकड़ते हो, हाँ मुझे पकड़ने का प्रयास करते हो, देखो अभी इतना ही किया है, आगे और कोशिश करोगे तो और कुछ हुआ कुछ देखते रहोगे तुम क्या होगा, इसलिए मुझे पकड़ने का प्रयास मत करो, मक्खन खिलाते रहो। तो ये सब क्यों करते हो? हाँ, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है उनको क्या है, इच्छा करने से वो अपने सामने हजारों किलो मक्खन प्रकट कर सकते हैं। कौन से फूल की खुशबू वाला चाहिए आपको, चमेली की खुशबू वाला चाहिए कि कमल के वाला चाहिए, अपने आप पैदा करके अपने आप खा सकते हैं। उनको गोपियों के घर में जा जाकर चोरी करके खाने की क्या जरूरत है, नहीं वो प्रेम को चाहते हैं, उस प्रेम को चखना चाहते हैं, इसलिए वो गोपियां भी दूर दूर टांग के रखते हैं उनको, छुप छुप के देखते हैं, अरे ये मेरे घर में आके चुरा रहा है, खा रहा है, पहले उसका वर्णन करते हैं, उससे बात करते हैं, उसका आनंद लेते हैं और आनंद लेने के लिए फिर सब आनंद लेते हैं, वो जब खाते हैं देखते हैं चोरी करके खा रहे हैं और सब करने के पश्चात घर पे भी जाते हैं शिकायत करने के लिए और उसका भी आनंद लेते हैं। एक बार क्या हुआ था कि छोटा सा बालक कृष्ण जो है वो अपने घर का मक्खन चुरा रहा था और सामने एक खंभा था रत्नों का बनाया हुआ और रत्नों के खंभे के बनाए हुए रत्न जो खंभ था वो आईने की तरह काम कर रहा था, हाँ पारदर्शी था, मतलब उसमें अपने आप को देखता है कृष्ण भगवान और उनको लगता है कि देखो मेरे जैसा कोई और बालक है वो भी मक्खन चुरा रहा है, बोलता है मक्खन चुरा मत, मैया देखेगी तो क्या बोलेगी, फिर मैया आती है, जब मैया देखो वो खंभे में एक और बालक है वो चोरी कर रहे हैं, उसको समझाया मैंने बहुत लेकिन सुना नहीं उसने, खाते रहा वो खाते रहा। इस समय सब देख रही है, पहले भी देख रही है, जब वो अकेले बात कर रहा है उस पर प्रतिबिंब के साथ हंस रही है बहुत, फिर आके उसको रोकती है, वो खा भी रहा है, वो देखो उसका हाथ आधा ऊपर तो उसका भी हाथ ऊपर आता ना। मत कहा मत कहा, मैया देखेगी, ये सब इस मैया देख रही है। इस तरह की चटपटी लीलाएं होती है वहां पर। तो ये सब प्रेम है भगवान का और इसी प्रेम की वजह से गोपाल जी प्रकट हुए उनके लिए, उसी प्रेम की वजह से उन्होंने सेवा दिया उनको, चंदन लाने का सेवा दिया, भोग लगाने का सेवा दिया, अभिषेक का सेवा दिया, मंदिर बनाने का सेवा दिया, फिर उसने खीर चुराया, खुद पहुंचाया उसके पास। तो हम सोचते हैं क्या है सब, ये तो वो इतिहास की कहानी है, सब तो किसने बना के लिखी गई है ऐसी बस, लेकिन शास्त्र में लिखा है। क्या आपको लगता होगा ये लकड़ी की मूर्ति है, कोई बोलेगा कोई पत्थर की मूर्ति उस मंदिर में, कोई बोलेगा उस किसकी और किसकी मूर्ति है, लेकिन जब हम प्रेम से भगवान की विग्रहों की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो विग्रह भक्तों से बोलने लगते हैं। ऐसे अनंत कहानियां हैं हमारे संप्रदाय में, कई आचार्यों के साथ में, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मधु पंडित, रघुनाथ दास गोस्वामी और साक्षी गोपाल के जो भक्त थे उनकी उनकी कहानी कितनी लंबी कहानी है, अनंत कहानियां ऐसी, मीरा बाई की कहानी है, गोविंद विट्ठलनाथ जी की कहानी है, ये सब ब्रज के भक्त हैं, इन सबके साथ में ठाकुर जी बात करते थे, रोज संवाद करते थे। यहाँ तक कि अभी अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी के समय पर कुछ 15 दिन पहले एक ब्रजवासी बाबा की मृत्यु हुई, उसका नाम था पीर बाबा, बीर बाबा नाम था उसका, वो हमेशा सभी कीर्तन मंडली में जब जाते थे तो बीच में राधा रानी की जय, राधा रानी की जय ऐसे चिल्लाते थे, बहुत मशहूर थे वो उनके चिल्लाने के लिए। लेकिन उनकी विशेषता ये थी कि अभी गर्मी का मौसम है, हाँ अभी ब्रज में तो 45 डिग्रीज 46 डिग्रीज 48 डिग्रीज तापमान चलता है, इतना गर्मी रहता है उधर, तो ये होल नाइट हर गर्मी में हर दिन पूरे समर सीजन के अंदर भगवान को पंखा करते थे, ठाकुर जी राधा रानी को पंखा करते थे। वहाँ पंखा मतलब कैसे होता है, एक डोरी रहती है बड़ी लंबी और वो ऐसे ऊपर जाकर वहाँ पर एक रिंग होती है, उसके अंदर से डोरी जाती है और आगे बड़ा कपड़े का पंखा होता है और डोरी ऐसे खींचते हैं तो पंखा ऐसे ऐसे हिलता है आगे पीछे आगे पीछे, दोरी ऐसे खींचेंगे तो आगे जाएगा, छोड़ेंगे तो पीछे आएगा, ऐसे उसकी हवा ही भगवान को चलती है, वहाँ पर पंखा मतलब बिजली का चलता नहीं भगवान के लिए। तो ये आदमी रात भर बैठकर शाम को शयन जब होता है तब से लेकर सुबह तक मंगला तक वैसे खींच खींच के राधा रानी को हवा देता था। तो एक पुजारी को स्वप्न आया, अभी की बात है, ये ज्यादा लंबी की बात नहीं है। वो पुजारी को स्वप्न आया, राधा रानी स्वप्न में आई, वो पुजारी को बताया उसने कि मेरे मंदिर के जहां पर मैं विराजमान हूं उसके ऊपर छत पर जो है सीलिंग के ऊपर बहुत गंदगी हो गई है, इसको साफ करना जरूरी है, आप साफ करवाओ। ऐसे पुजारी को आदेश देते हैं, पुजारी सुबह जगते हैं और सोचते हैं अरे राधा रानी स्वयं मुझे आके आदेश दिया है, लेकिन इतने ऊंचे छत में जाकर कौन साफ करेगा, उसको कैसे साफ कर सकते हैं। वो दिन भर सोचता रहा क्या करे क्या करे, कुछ उसको उत्तर नहीं मिला कि कैसे साफ करेंगे, किसको बुलाएंगे। तो फिर सो गए अगले दिन, फिर रात को स्वप्न आया और फिर स्वप्न में राधा रानी आके बोली उनको कि आप वीर बाबा को बुलाओ और उनसे साफ करवाओ। तो तुरंत गए वो मान मंदिर की तरफ, वीर बाबा को बुलाया और वीर बाबा ने ऊपर चढ़कर वो छत पूरा साफ कर दिया। तो पुजारी सोच रहे थे कितना भाग्यवान जी है, राधा रानी उनका नाम लेके बोल रही है इसको बुलाओ साफ करने के लिए। तो वो भक्त का ऑपरेशन हुआ था हमारे कैंप में और उसके बाद में वो बूढ़ा था बहुत, उनका बीमार हो गया, उनका लीवर खराब हो गया और अभी अभी 10 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो जो व्यक्ति भगवान के विग्रह को बड़े प्रेम से देखता है, वो प्रेम से सेवा करता है उनकी, उनसे भगवान वार्तालाप करते हैं। हमारे यहाँ पर भी ये अनुभव है हॉस्पिटल में, हमारे बड़े सुंदर प्रभु है ना, मिस्टर वेंकट रमणन है, ये हमारी प्रिंसिपल मैडम है नर्सिंग स्कूल की, मुझे बता रहे थे कि 2 बार मुझे प्रभुपाद जी का ऐसा अनुभव हुआ है। एक बार हमारा वो सर्टिफिकेट है ना, क्या कहते हैं उसको, एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट, उसकी वजह से हमारा स्कूल का परमिशन अटक गया था, बहुत देर हो रही थी, टाइम जा रहा था। तो वो सुबह की शिक्षाष्टकम प्रार्थना के बाद में उन्होंने प्रभुपाद से प्रार्थना किया कि प्रभुपाद जी आपकी संस्था है, आपका कॉलेज खोलना है, आपका प्रोजेक्ट है, अभी आप हम पर कृपा करो और जो आपकी इच्छा है वैसे करो। और दोपहर 2 बजे तक जो इम्पॉसिबल काम था वो पूरा हो गया और सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आया, एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट। तभी उन्होंने कहा था कि यस, आपने जो कहा था कि प्रभुपाद जी यहाँ पर है वो सत्य है। लोगों को लगता है कि मूर्ति है यहाँ पर, क्या कोई हिलती नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बनाई है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ऐसे कई अनुभव यहाँ पर उस पर हॉस्पिटल में हुए। एक बार ऐसे ही मिस्टर वेंकट सुबह प्रार्थना में आए और उनको कुछ बहुत बड़े अमाउंट का घाटा हो गया था और क्या करना है, बोल प्रभुपाद जी आप ही संभालो, कृपा करो कुछ। और जो डेफिसिट था 2 घंटे के बाद में एक व्यक्ति ने आके उतने अमाउंट का एक चेक दिया डोनेशन के रूप में। एकदम आश्चर्यचकित हो गए, आंखों से आंसू आए उनके, अरे क्या चमत्कार है, मैंने सुबह ही बोला था कि ये भी इतना रुपया कहाँ से आएगा इतने समय के अंदर, आज क्या जरूरत है उसकी, लेकिन कैसे आएगा इतना बड़ा अमाउंट। एक व्यक्ति आया अपने आप उस अमाउंट का चेक देखे, उतने सेम अमाउंट अकाउंट में देके गया, वो कौन था कहाँ से आया वो पता नहीं, नाम लिख के दिया और चला गया। ऐसे कई अनुभव है। कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसे भगवान के मूर्ति को ऐसा मत समझना, अरे क्या लकड़ी का किसने हाथ ने बनाया, अपने अशुद्ध नापाक हाथ से हाँ उसने बनाया है, वो कितना पापी व्यक्ति होगा जिसके हाथ में कितने जन्मों का पाप होगा, उस पाप के हाथ ही से वो मूर्ति बना हुआ है और लोग बोलते हैं इसमें भगवान बैठे हुए हैं, ये कैसे मान सकते हैं, मनुष्य अपने हाथ से भगवान को कैसे बना सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रतिमा ना ही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ऐसा वर्णन उनका आता है कि वो पेपर से बनी हुई हो, फोटोग्राफ हो, या मट्टी से बने हो, या पत्थर से बना हो, या लकड़ी से बना हो, या मन के अंदर बनी हो, भगवान ऐसे जगह प्रकट हो सकते हैं, लकड़ी के अंदर प्रकट हो सकते हैं, मन के अंदर प्रकट हो सकते हैं, पेंट के अंदर प्रकट हो सकते हैं, रंग के अंदर, कागज के अंदर प्रकट हो सकते हैं, वो कहा क्या नहीं कर सकते। अगर वो हमारे सबके हृदय में बैठे हुए हैं तो मूर्ति में क्यों नहीं प्रकट हो सकते, जो तुम्हारे हृदय में अणुमात्र रूप में जाकर बैठे बैठ सकते हैं परमात्मा के रूप में, कण कण में विराजमान है, तो वो मूर्ति में नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। अगर वो मूर्ति में नहीं आ सकते मतलब वो भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है, वो थोड़े कमजोर है, एक कमी है उनके अंदर की, वो मूर्ति में नहीं आ सकते। लेकिन भगवान जो है अभिज्ञ स्वराट है, वो सब कुछ कर सकते हैं, जो हम सोच नहीं सकते वो भी वो कर सकते हैं, और सोचते हैं सोच सकते हैं वो तो जरूर कर सकते हैं। और वही भगवान जो है जब तक आप उनको लकड़ी और पत्थर और पेंट और कागज के रूप में देखते हैं तब तक वो आपके लकड़ी कागज और पेंट हैं, लेकिन जब आप समझते हैं कि ठाकुर जी हैं तो आपके सामने ठाकुर जी के रूप में विराजमान होते हैं, आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, आपसे संवाद कर सकते हैं, आपको प्रतिसाद दे सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं, ये प्रेम का संबंध जो आपका जो है उसको प्रकट कर सकते हो। उनको श्रद्धा होनी चाहिए। आखिर में भक्ति का जीवन मतलब क्या है, डिवोशन मतलब क्या होता है, इसका आरंभ श्रद्धा से होता है। श्रद्धा है तो भगवान है, श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है। और अगर श्रद्धा है, निष्ठा है, तो आपके जीवन में भगवान प्रकट होकर चमत्कार सब कर सकते हैं। जरूरी नहीं इसके लिए कि आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, पढ़ा लिखा बनना पड़ेगा, धनी बनना पड़ेगा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में भावना है तो उसके लिए भगवान प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए सभी हमारे आचार्य जितने भी हम शास्त्र में वर्णन करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में, ब्रज के भक्तों के बारे में सुनते हैं, इनके साथ सब लोगों ने, सब लोगों के साथ में भगवान ने प्रत्यक्ष वार्तालाप किया है, संवाद किया उनके साथ में। वो जो गोपाल जी की मूर्ति का मैंने वर्णन किया भी आपको, वही गोपाल जी ये एक पीढ़ी समाप्त होने के पश्चात अगली पीढ़ी जब आई, विट्ठलनाथ जी और गोपाल लाल जी, बहुत सारे उनके गोस्वामी जी हैं, वो मूर्ति के रूप में प्रकट हुए थे ना भाई, गोपाल जी के रूप में। लेकिन दिन में कुछ समय मूर्ति से बाहर आकर बच्चा बनकर वो अपने भक्तों के साथ में खेलते थे। चतुर्भुज नाम के भक्त थे, उनका बालक, उनके पिताजी का नाम कुम्भनदास जी था। ऐसे कई भक्त साथ में हुए हैं। गोपाल जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी लीला जो थी उनकी अधूरी रह गई, तो पूरी करने के लिए गोपाल जी के रूप में प्रकट हो गए वो। और वो दिन का आधा दिन मूर्ति बन के रहते थे और आधा दिन अपने भक्तों के साथ में जंगल में खेलते थे। बड़ी चटपटी लीला है उनकी, साथ साथ प्रत्यक्ष साथ में खेलते थे। तो ऐसे भगवान की लीला है, इसलिए हमको श्रद्धा रखकर उनके नाम को लेकर उनको पुकारना चाहिए, श्रद्धा से उनको पुकारना चाहिए, श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए, बड़े प्रेम से और भावना से। तब हमारे भी ये तुच्छ जीवन में भी भगवान प्रकट होकर हमको संवाद, प्रतिसाद और प्रेम का आविर्भाव कर सकते हैं हमारे लिए, और हम सबके जीवन को धन्य कर सकते हैं। केवल श्रद्धा की कमी है, श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा से उनके नाम को हमको पुकारना चाहिए। अभी अगले रविवार को 16 तारीख को अक्षय तृतीया है, इस दिन चंदन यात्रा आरंभ होती है। हाँ, ये चंदन यात्रा का उगम जो है इसी कथा में है। गोपाल जी को जब स्वयं उन्होंने, गोपाल जी ने आदेश दिया माधवेंद्रपुरी को, तो ये चंदन यात्रा जो है उसी कथा से आरंभ होती है। उसी यात्रा के, उसी चंदन के जो लेप लगाया गया गोपीनाथ जी को गोपाल जी के उपलक्ष्य में, उसी की याद में आज भी अक्षय तृतीया से एक महीने तक हमारे सभी मंदिरों में, जितने ब्रज के मंदिर है सब मंदिरों में भगवान को भक्त लोग चंदन घिस घिस कर उसका लेप लगाते हैं, उसमें कलर लगाते हैं, अलग अलग रंग के रंग लगा देते हैं, बहुत सुंदर चंदन का लेप लगाते हैं, बहुत कुशलता से, बहुत कारागिरी के साथ लगाते हैं। और ऐसे कहा गया है कि अगर आप गर्मी से तप्त हो रहे हो, त्रस्त हो रहे हो, कष्ट प्राप्त हो रहा है गर्मी से आपको, तो जब भगवान को आप अपने हाथ से घिस घिस कर मेहनत करके चंदन बनाओगे तो आप भी ठंडे हो जाओगे उनको ठंडा करने के पश्चात। दिस इज हाउ इट इज। अगर आपको हकीकत में कष्ट है, गर्मी का पीड़ा होती है आपको, आप मंदिर में जाइए और आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट अपने हाथ से चंदन को घिसिए, फिर आपके तरफ से चंदन बनेगा 5 ग्राम का। बहुत सारे भक्त मिलकर सभी, फिर 2-4 किलो हो जाएगा वो, और जब तैयार हो जाएगा तो उत्थापन के समय 4 बजे फिर भगवान को वो सारा चंदन लेकर उसका लेप किया जाएगा पूरे शरीर में, फिर उसके चंदन के ऊपर आँखों को बनाया जाएगा उनके सब सुंदरता से, तो आपका 5 ग्राम भी चंदन उसमें जाएगा जो आपने अपने मेहनत से गर्मी में तपकर मेहनत से आपने घिसा हुआ है। वो चंदन जब भगवान को लगेगा और उनको ठंडक प्राप्त होगी तो अपने आप आपका हृदय भी शांत हो जाएगा। कैसे गर्मी हमारे हृदय के अंदर है, हमारे हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब का गर्मी से हम तड़प रहे हैं। जन्म जन्मांतर तक आकर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी का कष्ट भोग रहे हैं। हाँ, तो शरीर की गर्मी अलग होती है, मन की गर्मी विकारों की होती है, आत्मा की गर्मी क्या होती है, लोभ की, मद, मत्सर की, काम वासना की, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, धन प्राप्त करने की, पद प्राप्त करने की, सब जो गर्मियां हैं अंदर की, ये सब भगवान शांत कर देते हैं। हो सकता है शरीर आपका गर्म ही रहे फिर भी, लेकिन हृदय आपका जरूर शांत हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। तो कम से कम अगर आपको 5 मिनट के लिए भी अगर घिसने को टाइम नहीं है, कम से कम चंदन लगाए हुए भगवान का दर्शन करने के लिए जरूर जाइए आप। हाँ, अभी रविवार से शुरू होगा ये गुरुधारी मंदिर आपके लिए, 5 मिनट के अंतर पर भगवान ने आकर विश्राम लिया है अपना, विराजमान है वहाँ पर। 4:30 को आप जाइए, दिन भर भक्त लोग आपको दिखेंगे घिस रहे, भागवतम का प्रवचन चल रहा है, कुछ भक्त वहाँ पीछे बैठ के घिस रहे होंगे, जब के समय में कुछ घिस रहे होंगे और कुछ कर रहे, तो कुछ पीछे लोग चलते चलते रहते काम, बड़े बड़े पत्थर पर और कुछ लोग इकट्ठा करके जमा करते रहते हैं उनको, और दोपहर के बाद में उनको लगाना आरंभ कर देते हैं। और 4:30 बजे दर्शन खुलता है, बड़े सुंदर दर्शन भगवान के होते हैं, और 4:30 से लेकर 9 बजे तक चंदन लगाया हुआ दर्शन जो है वो खुला रहता है, 30 दिन तक लगेगा ये। उसको देखने मात्र से भी आपको ठंडक प्राप्त होगी, ये भी भगवान का वादा है। तो देखने में तो कोई कष्ट नहीं, अपना खाले जाना है यहाँ से वहाँ तक, थोड़ा सा टाइम निकाल के जाना है, 9 to 5 ड्यूटी करेंगे, कुछ टाइम मिलेगा, जाइए ज़रूर और भगवान का दर्शन कीजिए। हाँ, तो आपको इस चंदन यात्रा का आत्मिक स्वरूप से, आत्मिक स्तर पर लाभ होगा, शरीर का तो होगा ही, आँखों का होगा ही, लेकिन आत्मा के स्तर पर उनका लाभ होगा। अगर आप भगवान के विग्रहों की प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकते हैं, तो विग्रह की सेवा किए हुए दर्शन करना भी आपके लिए विग्रह की सेवा करने जैसा ही है। जब आप आरती हो रही है और आप खाली खड़े हैं आरती में, तो वो खड़े होकर आरती को देखना या आरती करने जैसा ही है, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द आरती। भगवान का श्रृंगार पर्दे में हुआ है, बंद पर्दे में, जब खुलता है और श्रृंगार किए भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, तो भगवान का श्रृंगार करने का लाभ आपको मिलता है जब आप उनका दर्शन करते हैं बड़े प्रेम से। इट इज एज गुड एज डीडी वर्शिप, डीडी ड्रेसिंग, इसका लाभ लीजिए आप। अनंत भक्त लोग इस महीने में मेहनत करते करके चंदन लेके आते हैं और दिया हुआ चंदन को घिसकर चंदन बनाते हैं, फिर कपूर डालते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, और फिर उसका प्रसाद लेकर अपने सर को भी लगाते हैं। हरे कृष्णा। श्री गोपाल जी महाराज की, माधवेंद्रपुरी जी की, चंदन यात्रा की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच।